एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज की जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
और स्वागत है आपका एकत्र ज्ञान गोष्ठी में।
आज हम एक ऐसी किताब और एक ऐसे विचारक की दुनिया में उतर रहे हैं जिन्होंने हमारे सोचने के तरीके को, मतलब खासकर भाषा और अर्थ को लेकर हमारी जो समझ है उसको जबरदस्त चुनौती दी है।
बिल्कुल, मैं हूं आपके साथ इन गहरे विचारों की परतें खोलने वाली साथी,
और मैं हूं उन परतों को थोड़ा और आसान बनाने की कोशिश करने वाला दोस्त। आज बात होगी जैक्स डेरिडा की बेहद प्रभावशाली और हाँ, थोड़ी मुश्किल भी मानी जाने वाली किताब ऑफ ग्रामेटोलॉजी की।
ऑफ ग्रामेटोलॉजी, ये किताब 1967 में आई थी, लेकिन इसके सवाल आज भी, मतलब उतने ही ताज़ा हैं।
हाँ, क्या सवाल उठाती है?
ये पूछती है, क्या बोली, मतलब जुबानी बात, हमेशा लिखी हुई बात से ज्यादा सच्ची होती है, ज्यादा असली?
हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। हम अक्सर कहते हैं ना, उसने जुबान दी है या फिर लिख कर ले लो। क्या इन दोनों में वाकई कोई बुनियादी फर्क है? मतलब क्या आवाज में कोई ऐसा जादू है जो लिखे हुए शब्दों में नहीं मिलता?
बिल्कुल, और ऑफ ग्रामेटोलॉजी पश्चिमी सोच की इसी, क्या कहते हैं, हजारों साल पुरानी आदत पर सवाल उठाती है, जहां बोलने को लिखने से ऊपर रखा गया है।
और ये मायने क्यों रखता है? मतलब ये बहस सिर्फ अकादमिक तो नहीं होगी?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी सच्चाई की समझ, ज्ञान की समझ, यहां तक कि हमारी पहचान की समझ को भी हिला सकती है, बदल सकती है।
अच्छा, तो चलिए पहले इस विचारक से मिलते हैं जिन्होंने ये सारी उथल पुथल मचाई। जैक्स डेरिडा कौन थे ये?
जैक्स डेरिडा, इनका जन्म 1930 में अल्जीरिया में हुआ, जो तब फ्रांस का उपनिवेश था, और 2004 में पेरिस में उनका देहांत हुआ। वो एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे और यकीनन 20वीं सदी के सबसे अहम और हाँ, विवादास्पद चिंतकों में से एक।
हाँ, विवादास्पद तो सुना है मैंने, उनकी पृष्ठभूमि भी कुछ अलग थी, है ना? अल्जीरिया में जन्म, फ्रांसीसी उपनिवेश।
हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, अल्जीरिया में एक यहूदी परिवार में जन्म, फ्रेंच शिक्षा पाई, लेकिन साथ ही वहां की जो स्थानीय अरबी संस्कृति थी उसका भी अनुभव था।
तो एक तरह से वो अंदर के भी थे और बाहर के भी।
बिल्कुल, जब वो पेरिस के बौद्धिक जगत में पहुंचे तो उनकी ये अनोखी स्थिति और कई भाषाओं का ज्ञान, फ्रेंच, जर्मन, कुछ अरबी भी, और अलग अलग संस्कृतियों की समझ, इन सब ने उन्हें पश्चिमी दर्शन की उन मान्यताओं को कुरेदने का एक खास नजरिया दिया, जिन्हें लोग बस मानकर चलते थे।
और उन्होंने पढ़ाई किस चीज की थी?
उन्होंने दर्शन, साहित्य, भाषा विज्ञान, इन सब का अध्ययन किया, खासकर हसरल और हाइडेगर जैसे जर्मन दार्शनिकों का बहुत गहरा अध्ययन किया था। इन सब ने मिलकर उन्हें वो औजार दिए जिनसे वो पश्चिमी विचारों की नींव की, क्या कहते, चीर फाड़ कर सके।
और यहीं से डीकंस्ट्रक्शन का आइडिया आया।
हाँ बिल्कुल, वो डीकंस्ट्रक्शन, विरचना या विघटन के सिद्धांत के लिए ही सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, और ऑफ ग्रामेटोलॉजी जो 1967 में आई, ये उनकी शुरुआती मगर सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से है। इसी ने डीकंस्ट्रक्शन की जमीन तैयार की।
ठीक है, तो अब आते हैं सीधे किताब पर, ऑफ ग्रामेटोलॉजी। इसका मूल आइडिया क्या है? किस बारे में है ये किताब?
देखिए, डेरिडा का जो मुख्य निशाना है वो है पश्चिमी दर्शन और सोच की एक बहुत पुरानी आदत, जिसे वो लोगोसेंट्रिज्म या फिर फोनोसेंट्रिज्म कहती हैं।
लोगोसेंट्रिज्म, फोनोसेंट्रिज्म, भारी शब्द है आसान भाषा में।
आसान भाषा में कहें तो ये वो सोच है जो मानती है कि बोली यानी आवाज वो लिखने यानी राइटिंग से ज्यादा मौलिक है, ज्यादा सीधी है, ज्यादा सच्ची है।
अच्छा, जैसे कि जब कोई बोल रहा है तो उसका विचार, उसका इरादा वो सीधे आवाज में उतर आता है बिना किसी रुकावट के।
आधुनिक भाषा विज्ञान के जो पितामह हैं सॉज्योर, उनमें भी ये दिखती है।
सॉज्योर ने भी यही माना?
हाँ, सबने माना कि लेखन तो बस बोली को रिकॉर्ड करने का एक तरीका है, एक तरह की नकल है, असल चीज तो बोली ही है। डेरिडा इसी पूरे विचार को पलट देती हैं।
पलट देती हैं? कैसे, क्या कहती हैं वो?
उनका जो बड़ा तर्क है वो ये है कि लेखन या एक ज्यादा बुनियादी किस्म का लेखन, जिसे वो आर्खे राइटिंग कहती हैं, वो असल में बोली से भी ज्यादा मौलिक है।
बोली से भी ज्यादा मौलिक? ये कैसे हो सकता है?
वो कहती हैं कि भाषा काम ही इसलिए कर पाती है क्योंकि उसमें अंतर, डिफरेंस और निशान, ट्रेस होते हैं, और ये चीजें तो हमेशा लिखने की खासियत मानी गई हैं। जैसे का अक्षर का मतलब इसलिए है क्योंकि वो ख से अलग है, ग से अलग है।
अंतर।
हाँ, डेरिडा दिखाती हैं कि बोली भी तो ऐसे अंतरों और निशानों पर टिकी है। बिल्ली का मतलब इसलिए है क्योंकि वो कुत्ता नहीं है, तो एक तरह से बोली खुद ही एक तरह की लिखाई है।
वाह, ये तो सही में उल्टी बात है, बोली भी एक तरह की लिखाई है, कमाल है। और डेरिडा का मकसद क्या है ये सब कहकर, मतलब सिर्फ बोली लिखाई का झगड़ा तो नहीं है?
नहीं, वो जिसे मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस कहती हैं उसकी आलोचना करना उनका मुख्य मकसद है।
मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस, ये फिर एक भारी शब्द आया।
हाँ, पर इसका मतलब बस इतना है कि पश्चिमी सोच में हमेशा से एक इच्छा रही है कि हम सच्चाई या अर्थ तक सीधे पहुंच जाएं, बिना किसी माध्यम के, बिना किसी मिलावट के, एकदम डायरेक्ट।
अच्छा, जैसे किसी चीज का असली शुद्ध मतलब जानना।
हाँ, गेरेडा कह रही है कि ऐसी सीधी पहुंच मुमकिन ही नहीं है। हम हमेशा भाषा, संकेतों यानी एक तरह के लेखन के जरिए ही चीजों को समझते हैं। अर्थ कभी भी पूरी तरह हाजिर प्रेजेंट नहीं होता, वो हमेशा थोड़ा आगे खिसकता रहता है, टलता रहता है।
टलता रहता है।
हाँ, यहीं पर उनका वो मशहूर कॉन्सेप्ट डिफरेंस आता है। ये फ्रेंच शब्द है जो डिफरेंस अंतर और डिफरल स्थगन यानी टालना दोनों का मिला जुला रूप है। अर्थ अंतर से बनता है और हमेशा थोड़ा टलता रहता है, कभी पूरी तरह पकड़ में नहीं आता।
मतलब अर्थ कभी पूरी तरह से यहां और अभी मौजूद नहीं होता, ये तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हम तो भाषा और अर्थ को कितना सीधा सरल मान लेते हैं।
बिल्कुल।
तो किताब में डेरिडा ये सब बातें कैसे समझाती हैं? क्या वो इसे अलग अलग हिस्सों में खोलती हैं?
हाँ, किताब मुख्य रूप से दो भागों में बटी है। पहला भाग है अक्षर से पहले लेखन, इसमें वो अपना सैद्धांतिक ढांचा खड़ा करती हैं।
अच्छा, इसमें क्या है?
इसमें वो भाषा विज्ञान पर ध्यान देती हैं, खासकर फर्डिनेंड डी सोस्योर के काम पर। सोस्योर ने कहा था कि भाषा अंतरों की एक व्यवस्था है ना? जैसे बिल्ली का मतलब इसलिए है क्योंकि वो कुत्ता या मेज नहीं है।
हाँ, ये तो भाषा विज्ञान का बेसिक है।
डेरिडा इस बात से सहमत है, इसकी तारीफ भी करती हैं, लेकिन वो सोस्योर की आलोचना करती हैं कि उन्होंने लेखन को सिर्फ बोली की नकल माना, उसे कमतर आंका।
तो डेरिडा क्या कहती हैं सोस्योर के बारे में, क्या नुक्ता निकालती हैं?
डेरिडा बड़े मजेदार तरीके से दिखाती हैं कि सोस्योर के अपने सिद्धांत, जैसे कि शब्द और उसके अर्थ के बीच कोई नेचुरल रिश्ता नहीं होता, वो मनमाना होता है, ये असल में लिखने की विशेषताएं हैं।
लिखने की?
कैसे? देखिए, लिखने में शब्द चीज से दूर होता है, उसका रिश्ता ज्यादा साफ तौर पर मनमाना लगता है ना? डेरिडा कहती है, देखो सोस्योर, तुम्हारी बातें ही साबित कर रही हैं कि बोली भी लिखने की तरह ही काम करती है, उसमें भी वही अंतर है, वही मनमानापन है।
अरे वाह।
हाँ, और यहीं से वो आर के राइटिंग का विचार लाती हैं।
हाँ।
एक ऐसा बुनियादी लेखन,
हाँ।
एक ऐसा निशान बनाने, अंतर पैदा करने का सिस्टम जो बोली और लिखाई दोनों से पहले आता है और दोनों को संभव बनाता है।
आद्य लेखन?
हाँ,
मतलब हर तरह के निशान, हर तरह का कोड?
हाँ बिल्कुल, इसीलिए वो कहती हैं कि हमें एक नए विज्ञान ग्रामेटोलॉजी की जरूरत है। ये सिर्फ लिपियों का अध्ययन नहीं होगा, बल्कि हर तरह के निशान, कोड, संरचनाएं, जिनसे भी अर्थ बनता है, उन सब का अध्ययन होगा। और ये विज्ञान प्रकृति और संस्कृति के बीच की जो दीवार हमने खड़ी कर रखी है, उसे भी गिराता है।
प्रकृति और संस्कृति की दीवार?
हाँ,
कैसे?
वो दिखाती हैं कि जिसे हम प्रकृति कहते हैं, उसमें भी पहले से ही लेखन यानी संरचना, अंतर, पैटर्न मौजूद है। और संस्कृति तो खैर है ही एक तरह की लिखाई, हमारे रीति रिवाज, नियम, सब कुछ।
ये तो काफी गहरा जा रहा है। अब आते हैं किताब के दूसरे भाग पर, प्रकृति, संस्कृति, लेखन।
जी,
यहाँ डेरिडा क्या करती हैं?
इस भाग में वो अपने इन विचारों को दूसरे विचारकों के लेखन पर लागू करके दिखाती हैं। एक बहुत अहम हिस्सा है मानव विज्ञानी क्लॉड लीवी स्ट्रॉस के काम का विश्लेषण।
लीवी स्ट्रॉस, जिन्होंने वो आदिवासी समुदायों पर काम किया था।
हाँ, लीवी स्ट्रॉस ने ब्राजील की नाम्बिक्वारा जनजाति के बारे में लिखा था और उन्हें बिना लेखन वाला समाज माना था। उनका कहना था कि जब इन लोगों ने लिखना, लिपि वाला लिखना सीखा, तो समाज में सत्ता का खेल और भेदभाव शुरू हो गया।
हाँ, जैसे लिखना ही सारी बुराई की जड़ हो।
बिल्कुल। डेरिडा कहती हैं कि लीवी स्ट्रॉस यहाँ फिर से लिखने को बाहरी और बुरा मान रहे हैं और ये मान रहे हैं कि लिखने से पहले सब कुछ बड़ा शुद्ध और मासूम था। डेरिडा तर्क देती हैं कि नाम्बिक्वारा समाज में लिखने का एक व्यापक अर्थ, मतलब नियम, रिश्तेदारी के सिस्टम, वर्गीकरण, वो तो पहले से ही मौजूद था।
अच्छा, मतलब लिपि नहीं थी पर एक तरह की सामाजिक लिखाई पहले से थी।
हाँ, जिसे लेवी स्ट्रॉस प्राकृतिक अवस्था मान रहे हैं, उसमें भी संरचनाएं और नियम थे। लिखने या लिपि के आने से बस उसका रूप बदला। हिंसा या सत्ता का खेल कोई लिखने की वजह से अचानक शुरू नहीं हुआ, वो पहले से मौजूद था, शायद अलग रूप में।
ये दिलचस्प नुक्ता है। और फिर वो रूसो पर आती है, जीन जैक्स रूसो, जो प्रकृति और भावनाओं की बातें करते थे।
हाँ, और ये किताब का सबसे बड़ा और शायद सबसे जटिल हिस्सा है। डेरिडा रूसो के एक निबंध भाषाओं की उत्पत्ति पर का बहुत ही गहरा, मतलब शब्द दर शब्द विश्लेषण करती हैं। रूसो तो पक्के तौर पर मानते थे कि बोली दिल के ज्यादा करीब है, सच्ची है, जबकि लेखन दिमागी है, बनावटी है और समाज को बिगाड़ता है।
तो वो तो डेरिडा के बिल्कुल उलट हुए।
हाँ, सतह पर तो यही लगता है, लेकिन डेरिडा दिखाती हैं कि रूसो जो इतनी जोर शोर से बोली का गुणगान करते हैं, अनजाने में अपनी ही लिखाई में बार बार ये दिखाते हैं कि लेखन कितना जरूरी है और कैसे वो बोली की किसी ना किसी कमी को पूरा करता है।
अच्छा, अपनी ही बात काटते हैं रूसो
एक तरह से। हाँ, और यहीं डेरिडा अपने एक और मशहूर तर्क सप्लीमेंट यानी पूरक का विश्लेषण करती हैं।
हाँ, ये सप्लीमेंट या पूरक वाला आइडिया मैंने सुना है, पर ये थोड़ा मुश्किल लगता है। इसका मतलब क्या है, समझाएंगी जरा?
जरूर। देखिए, रूसो के लिए लेखन बोली का पूरक है, मतलब एक एक्स्ट्रा चीज जो बाहर से जोड़ी गई है, जो असल चीज बोली जितनी अच्छी नहीं है। जैसे चश्मे आंखों के पूरक हैं या विटामिन की गोली खाने का पूरक है।
ठीक है, मतलब जो जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल हो।
हाँ, लेकिन डेरिडा इस शब्द सप्लीमेंट के दोहरे मतलब पर ध्यान दिलाती हैं। फ्रेंच भाषा में और अंग्रेजी में भी कुछ हद तक सप्लीमेंट का मतलब है जोड़ना,
टू एड टू,
लेकिन इसका एक मतलब जगह लेना, टू टेक द प्लेस ऑफ भी होता है।
अच्छा, जोड़ना भी और जगह लेना भी।
तो डेरिडा कहती हैं कि जब कोई चीज किसी दूसरी चीज की पूरक बनती है, तो वो सिर्फ कुछ जोड़ती नहीं है, बल्कि वो उस पहली चीज की किसी कमी या अपूर्णता की तरफ भी इशारा करती है।
कमी की तरफ? कैसे?
सोचिए, अगर बोली अपने आप में पूरी होती, एकदम समर्थ, तो उसे लेखन जैसे पूरक की जरूरत ही क्यों पड़ती? विटामिन की गोली हम तभी लेते हैं जब हमें लगता है कि खाने में किसी चीज की कमी है ना?
हाँ, बात तो सही है।
तो पूरक चीज जैसे लेखन अनजाने में ही उस मूल चीज जैसे बोली के खोखलेपन या अधूरेपन को उजागर कर देती है। यही है पूरकता का तर्क, लॉजिक ऑफ सप्लीमेंट्री। जो चीज बाहरी या दूसरे दर्जे की लगती है, वो असल में जरूरी निकलती है और दिखाती है कि मूल कभी पूरी तरह मूल था ही नहीं, उसमें हमेशा से किसी पूरक की गुंजाइश थी।
बाप रे, ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला तर्क है।
हाँ,
मतलब जिसे हम एक्स्ट्रा समझ रहे हैं, वही असल में ये बता रहा है कि पहली वाली चीज में ही कुछ
कमी थी। बिल्कुल।
तो अगर हम इस पूरी किताब से जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं उन्हें समेटना चाहें, तो वो क्या होंगे, 3-4 मुख्य संदेश?
जरूर, कुछ बड़े आइडियाज हैं जो बार बार आते हैं। पहला, लोगोसेंट्रिज्म और फोनोसेंट्रिज्म की आलोचना। ये जो सोच है कि बोली लिखने से बेहतर या ज्यादा असली है, ये एक पूर्वाग्रह है। डेरिडा इसे चुनौती देती हैं।
ठीक है, दूसरा?
दूसरा, डिफरेंस। अर्थ कभी भी एक जगह टिका हुआ उपस्थित नहीं होता, वो हमेशा शब्दों के आपसी अंतर, डिफरेंस, और अर्थ के लगातार आगे टलते जाने के खेल से बनता रहता है, मतलब हमेशा थोड़ा फिसलता रहता है।
ओके, डिफरेंस। तीसरा?
तीसरा, आर्के राइटिंग। एक बुनियादी लेखन या निशान बनाने की व्यवस्था जो पारंपरिक बोली और लिखाई दोनों से ज्यादा मौलिक है और उन्हें संभव बनाती है। ये सिर्फ अक्षर नहीं, हर तरह का निशान है।
और चौथा?
चौथा, वही पूरकता का तर्क। जो चीजें बाहरी, नकली या दूसरे दर्जे की लगती हैं, जैसे लेखन, नकल, संस्कृति, वो अक्सर जरूरी होती हैं और उस मूल या प्राकृतिक चीज की कमी को जागर करती हैं जिसकी वो पूरक बनती हैं।
और शायद पांचवा, ये कि अर्थ स्थिर नहीं होता।
हाँ, बिल्कुल। अर्थ की अस्थिरता किसी भी टेक्स्ट का, चाहे वो बोला गया हो या लिखा गया हो, कोई एक आखिरी पक्का मतलब नहीं होता, मतलब हमेशा व्याख्या पर निर्भर करता है और बदलता रहता है।
इन सबको सोचते हुए मुझे हमारे यहाँ के अनुभव याद आते हैं। जैसे हम कभी कभी कहते हैं, जुबान का सौदा पक्का होता है, लिखित कॉन्ट्रैक्ट से भी ज्यादा।
हाँ, होता है।
या फिर जैसे पुरानी पीढ़ी मौखिक परंपराओं और ज्ञान को ज्यादा मानती है, जबकि नई पीढ़ी हर चीज का डॉक्यूमेंट चाहती है। ये डेरिडा की बातों से कहीं ना कहीं जुड़ता है ना? कि हम बोली और लिखाई को कैसे देखते हैं, किसको ज्यादा वजन देते हैं।
बिल्कुल, ये सोचने लायक बिंदु है। डेरिडा हमें यही सिखाती हैं कि अपनी इन मान्यताओं पर सवाल उठाएं।
अब कुछ उन विचारों या पंक्तियों की बात करें जो इस किताब से बहुत मशहूर हुई, कुछ यादगार बातें।
हाँ जरूर, ऐसी किताब में कुछ पंक्तियां तो हैं जो बहुत कोट की जाती है। सबसे मशहूर और शायद सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली पंक्ति है, पाठ के बाहर कुछ भी नहीं है।
Il n'y a pas de haut texte।
हाँ,
ये तो मैंने भी सुना है। कई लोग सोचते हैं इसका मतलब है कि असल दुनिया है ही नहीं, सब बस शब्द हैं। क्या यही मतलब है?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। डेरिडा का मतलब ये नहीं कि दुनिया मौजूद नहीं है या यथार्थ नहीं है, बल्कि ये कि हम दुनिया को या किसी भी चीज को हमेशा किसी न किसी पाठ के जरिए ही समझते हैं। भाषा के जरिए, संकेतों के जरिए, हमारी व्याख्याओं, हमारी सांस्कृतिक समझ के जरिए। हमारी पहुंच सच्चाई तक कभी सीधी नहीं होती, वो हमेशा इन पाठों से होकर गुजरती है। हम यथार्थ को बिना व्याख्या के नहीं जान सकते।
अच्छा, तो ये मतलब है, मतलब हम हमेशा एक तरह का चश्मा पहने रहते हैं जिसके बिना देख ही नहीं सकते।
और वो पूरक वाली बात, उसके बारे में कोई खास पंक्ति? डेरिडा के विचार को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे पूरक सिर्फ जोड़ता नहीं, वो बदल देता है। वो धीरे धीरे उस चीज की जगह लेने लगता है जिसकी वो कमी पूरी कर रहा था। ये उस पूरक के विरोधाभासी खेल को दिखाता है, कैसे वो मदद करते करते असल चीज पर हावी हो जाता है और उसकी जरूरत पर ही सवाल उठा देता है।
और ट्रेस या निशान के बारे में?
एक विचार ये है कि निशान, ट्रेस खुद में कुछ नहीं होता, वो बस किसी और चीज की गैर मौजूदगी का इशारा होता है जो हमें कहीं और ले जाता है। मतलब किसी शब्द का अर्थ उसमें खुद में नहीं होता, बल्कि दूसरे शब्दों से उसके अंतर में होता है और उन शब्दों के निशानों में होता है जो उस वक्त मौजूद नहीं है। अर्थ हमेशा इन निशानों के एक जाल में बनता है।
और डिफरेंस, वो कैसे अर्थ को संभव बनाता है?
कहा जा सकता है डिफरेंस ही वो चीज है जो किसी भी चीज को वर्तमान या अर्थपूर्ण के रूप में प्रकट होने देती है। मतलब अगर सब कुछ एक जैसा होता, कोई अंतर न होता और अर्थ तुरंत मिल जाता बिना किसी देरी के, तो कुछ भी अलग से पहचाना ही नहीं जा सकता था। ये अंतर और ये स्थगन का खेल ही है जो दुनिया को हमारे लिए मायने देता है।
ये विचार सच में हमारी रोजमर्रा की सोच से काफी अलग है। अब सवाल ये उठता है कि भाई, इन भारी भरकम जटिल बातों का हमारी आम जिंदगी में क्या काम, हम इनका क्या करें?
ये सबसे जरूरी सवाल है, है ना? देखिए, डेरिडा के विचार सीधे सीधे कैसे जिए वाले नुस्खे नहीं देते, लेकिन वो हमारे सोचने का औजार जरूर बदल देते हैं। सबसे पहली बात, ये हमें बेहतर आलोचक, क्रिटिकल थिंकर बनाते हैं।
आलोचक मतलब नुक्ताचीनी करने वाला?
नहीं, आलोचक मतलब जो चीजों को मानकर न चले, जो सवाल पूछे। हम अपने आसपास की चीजों को, विचारों को हल्के में लेना बंद कर देते हैं।
जैसे कोई उदाहरण?
जैसे हम विज्ञापनों को देखते हैं, कोई चीज नेचुरल कहकर बेची जा रही है, कोई ऑथेंटिक कहकर। डेरिडा हमें सिखाती है कि पूछो किसके मुकाबले नेचुरल, क्या है जो नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल और बनावटी का बंटवारा किसने और क्यों किया। हम किसी नेता के भाषण में सुन सकते हैं कि कौन सी बातें छुपाई जा रही हैं, कौन सी मान्यताएं बिना कहे मान ली गई हैं।
हाँ, ये तो है। और आज के डिजिटल जमाने में तो ये और भी जरूरी लगता है। ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज, सोशल मीडिया पोस्ट, ये सब तो एक तरह का लेखन ही है ना?
बिल्कुल। डेरिडा हमें समझने में मदद करती है कि ये टेक्नोलॉजी कैसे हमारी पहचान, हमारे रिश्ते और सच की हमारी धारणा को बदल रही है। क्या एक जूम कॉल, आमने सामने की मुलाकात जितनी असली है? क्यों? एक इमोजी का क्या मतलब है? एक टेक्स्ट मैसेज का टोन कैसे समझें? डेरिडा के विचार हमें इन सवालों से जूझने का एक फ्रेमवर्क देते हैं।
और क्या हम इसे कानूनों या नियमों को समझने में इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे अक्सर बहस होती है कि संविधान बनाने वालों का असली इरादा क्या था।
हाँ, डेरिडा का काम इस विचार पर सवाल उठाता है कि हम किसी टेक्स्ट का एक निश्चित मूल अर्थ पा सकते हैं। वो दिखाती है कि व्याख्या हमेशा बदलती है, पढ़ने वाले पर निर्भर करती है, संदर्भ पर निर्भर करती है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मतलब निकाला जा सकता है, बल्कि ये कि अर्थ हमेशा बहस और बातचीत का विषय रहेगा, वो कभी पत्थर की लकीर नहीं होता।
और अपनी पहचान के बारे में, क्या मेरा कोई एक असली मैं है? क्या डेरिडा इस पर कुछ कहती है?
डेरिडा शायद कहेंगी कि हमारी पहचान भी एक तरह का पाठ है जो लगातार लिखा जा रहा है, हमारे अनुभवों से, हमारे रिश्तों से, समाज की उम्मीदों से, भाषा से। कोई एक स्थिर अंदरूनी मैं शायद इन सब बुनावटों से बाहर मौजूद नहीं है।
ये तो थोड़ा बेचैन करने वाला विचार हो सकता है।
हाँ, हो सकता है, लेकिन ये हमें अपनी पहचान को ज्यादा लचीला, ज्यादा खुला देखने में भी मदद कर सकता है, कम बोझिल महसूस करा सकता है।
और कला, साहित्य, फिल्में, वहाँ डेरिडा पैसे काम आते हैं?
वहाँ तो डेरिडा के विचार बहुत काम आते हैं। हम किसी कहानी या कविता का एक सही मतलब खोजने की जो जिद होती है उसे छोड़ सकते हैं। हम उसकी अस्पष्टता, उसके विरोधाभासों, उसकी अलग अलग व्याख्याओं की संभावनाओं का मजा ले सकते हैं। एक अच्छी कलाकृति हमें सोचने पर मजबूर करती है, वो हमें तैयार जवाब नहीं थमा देती।
तो कुल मिला के डेरिडा के विचार हमें दुनिया को और शायद खुद को भी ज्यादा जटिल, ज्यादा स्तरों वाला और कम निश्चित मानने के लिए तैयार करते हैं।
सवाल पूछना सिखाते हैं, है ना?
बिल्कुल। मेरे लिए तो सबसे चौंकाने वाली बात शायद यही रही कि कैसे डेरिडा ने बोली और लिखाई के रिश्ते को ही पलट दिया, और वो पूरक का तर्क ये कैसे दिखाता है कि जिसे हम कमतर या बाहरी मानते हैं वही असल में कितना जरूरी हो सकता है और मूल की पोल खोल सकता है। और मुझे उनका टेक्स्ट को बहुत ध्यान से, मतलब एक एक शब्द को पकड़कर पढ़ने का तरीका पसंद आया। वो दिखाते हैं कि कैसे बड़े बड़े विचारक भी अनजाने में अपनी ही बातों को काट देते हैं या उनमें तनाव होता है। और हाँ, ये विचार की अर्थ कभी पूरी तरह स्थिर नहीं होता, ये हमें थोड़ा विनम्र बनाता है, दूसरों की व्याख्याओं के लिए ज्यादा खुला बनाता है, ये हमें सतह के नीचे देखने के लिए उकसाता है।
सच कहा, अब ग्रामेटोलॉजी यकीनन एक चुनौती है, इसे पढ़ना आसान नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी चुनौती है जो हमारे दिमाग के जाले साफ कर सकती है और हमें दुनिया को, भाषा को और खुद को भी एक नए नजरिए से देखने में मदद कर सकती है।
ये किताब याद दिलाती है कि भाषा सिर्फ हमारे विचारों को बताने का एक साधन नहीं है, वो हमारे विचारों को बनाती भी है। हम भाषा में ही सोचते हैं।
बिल्कुल।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।